समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिसका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो मुकेश, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विद मी टुडे इज माय को-होस्ट मुकेश। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेडलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
जी, गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों से मिलकर काम करने का आह्वान। उन्होंने कहा, वर्तमान में 372 जिलों में नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है।
हैवी रेन रीक्स हैवॉक इन देहरादून एंड इट्स एडजॉइनिंग एरियाज। IMD इश्यूज ऑरेंज अलर्ट फॉर हैवी रेनफॉल इन देहरादून, नैनीताल एंड चंपावत डिस्ट्रिक्ट्स टुडे।
संयुक्त राष्ट्र जांच आयोग ने कहा, इसराइल ने गजा में फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया।
India's ambassador to United States, Vinay Mohan Quatra, describes ISRO-NASA partnership as important pillar of India-US cooperation.
और ICC ने दुबई में भारत पाकिस्तान मुकाबले के बाद मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मांग अस्वीकार की।
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today, we will talk about World Ozone Day. And Mukesh, today we are going to talk about one of the most important topics that not only affects us, but also affects the environment, that is the World Ozone Day. And World Ozone Day, also known as International Day for the Preservation of the Ozone Layer, aims to raise awareness about the importance of preserving the ozone layer. Nations come together and agree to take appropriate measures to protect people and the planet from harmful UV radiation that enters the Earth's surface through a damaged ozone layer. And every year, the World Ozone Day is observed on September 16th. The day highlights the importance of protecting the ozone layer, which protects the Earth from harmful UV rays. And it marks the signing of the Montreal Protocol, which is a global agreement to phase out ozone-depleting substances.
बिल्कुल, पृथ्वी को बचाने के लिए ओजोन परत बहुत आवश्यक होती है। इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है, लेकिन इंसानों की कुछ गलतियों की वजह से ये परत बहुत तेजी से क्षतिग्रस्त होती जा रही है। तो आइए जानें कि इसके बारे में कुछ रोचक बातें क्या हैं। क्या होती है ओजोन परत? पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे ऊंची परतों में से एक परत को ओजोन परत कहते हैं। इसका काम सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों को हमारी पृथ्वी में प्रवेश करने से रोकना है। इतना ही नहीं, ये कई तरह की हानिकारक किरणों से भी बचाव करती है। इसकी खोज 1913 में फ्रांस के भौतिक विज्ञानी फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी।
Yes, and every year there's a theme for the World Ozone Day, which focuses on the challenges and the progress that is to be made. And the theme for the World Ozone Day 2025 is From Science to Global Action. And it highlights the journey from scientific research that detected ozone depletion to the coordinated global actions taken under treaties like the Montreal Protocol to protect the ozone layer.
बिल्कुल अभिषेक, आपको क्या पता है कि ओजोन दिवस के इतिहास के बारे में क्या जानकारी है आपके पास?
Yes, please tell us, Mukesh.
जी बिल्कुल, दरअसल ओजोन दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1970 में वैज्ञानिकों को खोज के दौरान ये बात पता चली थी कि ओजोन परत में छेद हो रहा है। इसकी सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र और 45 देशों ने मिलकर 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद ओजोन परत को बचाने के लिए कई देश एक साथ मिलकर काम करने लगे। 1987 में मॉन्ट्रियल घोषणा के लागू होने की सालगिरह पर यह दिन चुना गया है।
Yes, also Mukesh, let's tell our listeners, why is the ozone layer important? Well, the ozone layer is a concentrated band of ozone gas that sits in the stratosphere around 15 to 35 kilometers above Earth, and it acts as a shield blocking most UVB radiation from reaching the surface, and without it, humans would face far greater risks of skin cancer and eye damage, while plants and marine life would also suffer. And even a small thinning of this layer increases UV exposure. And that is why global action to protect it has been called one of the greatest environmental success stories in history. And according to the United Nations, if countries continue to follow the protocol, the ozone layer is expected to recover to pre-1980 levels by the middle of the century.
और श्रोताओं, परिक्रमा कार्यक्रम में अब वक्त हुआ है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। तो इस क्रम में सबसे पहले अभिषेक, सेवा पर्व की बात करें।
एब्सोल्युटली मुकेश, एंड गाइडेड बाय द मंत्र ऑफ सेवा एंड सुशासन दैट इज पब्लिक सर्विस एंड गुड गवर्नेंस, द गवर्नमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन वर्किंग टायरलेसली टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोग्रेस। And today in the special series Seva Parv, we bring to you how the Modi government has transformed India into a global climate champion.
From being seen as a developing nation with growing energy needs, India has fast risen to become a global climate champion. In the last 11 years, from conserving forests to championing climate justice, from solar rooftops to green mobility, India is proving that growth and sustainability can go hand in hand. At the COP21 in Paris, India pledged to achieve 40% installed clean energy capacity by 2030. But rising to its commitment, the country achieved the target in 2021, 9 years ahead of schedule. During his visit to the United States in September last year, Prime Minister Narendra Modi highlighted that India has 17% of the world's population and its carbon emissions are less than 4%.
Duniya ki 17% population hone ke bawajood global carbon emission mein Bharat ki hissedari sirf 4% hai. Duniya ko barbaad karne mein hamara koi role nahi hai.
The country also launched the Global Life Movement, that is Lifestyle for Environment, a call to adopt simple sustainable choices in daily life. At the COP29 in Baku, India highlighted breakthroughs in green hydrogen, industrial decarbonization, and women-led climate action. Praising Prime Minister Modi for being the leading voice against climate change, Australian philanthropist Dr. Andrew Forrest said,
"The Prime Minister is clearly a global champion on, and I've Prime Minister to be, if you like, the global government partner, I'll be the global industry partner to promote green hydrogen across the world."
With bold commitments and real action, India is not just participating in the global climate dialogue, it is shaping it.
और अब चलते हैं महाराष्ट्र, और पुणे को महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। पुणे में संगीत, गायन, नाटक और साहित्य से जुड़े कई कार्यक्रम लगातार आयोजित होते रहते हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम नाट्य स्वर यज्ञ हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। तो आइए सुनते हैं इसकी अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
मराठी कला विश्व में संगीत नाटकों की समृद्ध परंपरा का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। नटश्रेष्ठ बाल गंधर्व, मास्टर कृष्णराव, मास्टर दीनानाथ और कई अन्य महान कलाकारों ने इसे स्वर्णिम मुकाम तक पहुंचाया है। इन्हीं दिग्गज कलाकारों में एक महत्वपूर्ण नाम है जयमाला शिलेदार जी का। जयमाला शिलेदार ने संगीत रंगमंच पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। पद्मश्री सम्मान प्राप्त जयमाला शिलेदार की जन्म शताब्दी के अवसर पर उनकी शिष्या अश्विनी गोखले जी की अश्विनी स्वरालय संस्था ने हाल ही में नाट्य स्वर यज्ञ नामक विशेष कार्यक्रम पुणे में आयोजित किया था, जिसमें 22 संगीत नाटकों के 101 नाट्य गीतों की प्रस्तुति के द्वारा जयमाला शिलेदार जी को अभिवादन किया गया। अश्विनी गोखले जी ने इस कार्यक्रम की अधिक जानकारी देते हुए कहा,
"यह वर्ष मराठी संगीत रंगमंच की प्रसिद्ध गायिका, अभिनेत्री और मेरी गुरु आदरणीय पद्मश्री जयमालाबाई शिलेदार जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। मुझे जयमालाबाई से लगभग 17-18 वर्षों तक नाट्य संगीत की तालीम मिली। उन्होंने जो कई प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध नाट्य गीत सिखाए उनका प्रसार प्रचार हो और इस जन्म शताब्दी के अवसर पर उन्हें एक अनोखी श्रद्धांजलि अर्पित की जाए, इस उद्देश्य से हमारी संस्था की ओर से 101 नाट्य गीतों का एक विशेष कार्यक्रम नाट्य स्वर यज्ञ 14 सितंबर को पुणे में आयोजित किया गया। यह अनूठा कार्यक्रम सुनने के लिए पुणे के संगीत प्रेमियों की भारी भीड़ उमड़ी थी।
इस कलाविष्कार में विभिन्न आयु वर्ग के 65 कलाकारों ने हिस्सा लिया। प्रचलित गीतों के साथ साथ दुर्लभ नाट्य पदों को भी सुनने का अवसर श्रोतागणों को मिला। गुरु शिष्य परंपरा को प्रदर्शित करने वाले ऐसे कार्यक्रम राज्य की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में पुणे की पहचान को और उजागर कर रहे हैं। परिक्रमा के लिए पुणे से माधवी कुलकर्णी।
और अभिषेक, अब अपने श्रोताओं को ले चलते हैं विशाखापट्टनम, जहां पर भविष्य के यातायात प्रबंध पर काम किया जा रहा है।
Vishakhapatnam is driving into the future of traffic management, and with the launch of Project Sarthi, the city is embracing artificial intelligence to bring smoother travel, safer roads and cleaner air. Our correspondent has filed this report.
The Greater Vishakhapatnam Municipal Corporation, in association with the city police, has unveiled Project Sarthi. The name stands for Systematic Augmented Radical Traffic and Hoop Induction. This initiative aims to transform everyday commuting in the coastal city with the power of technology. Under this project, signals at major junctions will be synchronized, helping vehicles move without long stop. Officials say this will save time for lakhs of daily travelers and also cut down on fuel wastage and air pollution. The system will use state-of-the-art tools like automatic number plate recognition, red light violation detection, and even facial recognition at crowded places. These measures will not only regulate traffic but also improve public safety and enforcement. GVMC Commissioner Ketan Garg announced that the first phase of the project will cover 50 of the city's 115 major junctions. He emphasized that Sarthi is more than just a traffic solution. It is a step towards a cleaner and smarter Vizag. The project has already proved its worth. A pilot test was carried out during the Giri Pradakshina of the Simhachalam Temple Festival. Using facial recognition, officials were able to estimate the number of devotees participating in the annual event with positive results. With a detailed project report under preparation, Project Sarthi is now moving closer to reality. Authorities believe the initiative will ease congestion, reduce emissions, and set Vishakhapatnam on the path of becoming one of India's leading smart cities. Allu Murali for Parikrama, Akashwani News, Vishakhapatnam.
So, with that report from Vishakhapatnam, we now move on to another story from Ranchi. Mukesh?
जी बिल्कुल, झारखंड में पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार पहल की जा रही है। इस कड़ी में दुमका के ऐतिहासिक मलूटी मंदिर परिसर के समग्र विकास की कार्य योजना तैयार की गई है। जिले के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने इसे लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, तो आइए सुनते हैं रिपोर्ट।
झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर दुमका जिले में अवस्थित सैकड़ों साल पुराने मंदिरों के गांव मलूटी मूल रूप से 108 मंदिरों के लिए जाना जाता था, जिनमें से अब 72 मंदिर बचे हैं। दुर्भाग्य से अपर्याप्त रखरखाव और प्राकृतिक आपदाओं के कारण यह मंदिर अब खतरे में है। ऐसे में इसके पुनरुद्धार की पहल तेज कर दी गई है। जिला प्रशासन के सहयोग से और जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के सदस्य तूफान पोद्दार बताते हैं कि मलूटी मंदिरों के विकास और पर्यटकों को इससे जुड़े ऐतिहासिक एवं धार्मिक जानकारियां देने के लिए एक वर्चुअल रियलिटी रूम बनाने की योजना है। इस वर्चुअल रियलिटी शो के जरिए पर्यटक इससे जुड़ी सभी जानकारियां वर्चुअल माध्यम से ले सकेंगे।
मलूटी समूह के जितने भी मंदिर हैं, उसको अभी ASI द्वारा संरक्षण किया जा रहा है और जो भी मंदिर जिसमें जो क्षतिग्रस्त हुई है या थोड़ी बहुत उसमें रिपेयरिंग की आवश्यकता है, उसको ASI के माध्यम से ही रिपेयर किया जा रहा है, जिसमें कोशिश ये की जा रही है कि जो मटेरियल उसमें पहले से लगा है उसी मटेरियल का इस्तेमाल करके उसका जीर्णोद्धार किया जाए। और इसके अलावा जो हमारे झारखंड सरकार की तरफ से जिला पर्यटन संवर्धन परिषद की तरफ से जो हमारी कोशिश है, अभी रिसेंटली जो उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई है, उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि वहां पर एक टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर की हम लोग वहां पर स्थापना करें, ताकि जो भी पर्यटक वहां पर आते हैं मलूटी के बारे में उसको जानकारी हो, और अगर कोई ऐसे पर्यटक आते हैं जो वहां घूमना चाहते हैं तो उनको भी हम लोग इस TIC के माध्यम से मदद करेंगे।
परिक्रमा के लिए रांची से शिल्पी और दुमका से आरके नीरद की एक रिपोर्ट।
और अब नई दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में आज प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी के सातवें संस्करण का शुभारंभ हुआ है। इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उपस्थित रहे। तो प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश और विदेश में प्राप्त 1300 से अधिक उपहारों की नीलामी की जाएगी। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इन उपहारों में पेंटिंग्स, कलाकृतियां, देवी देवताओं की मूर्तियां, हस्तशिल्प, खेल सामग्री और कई अन्य बहुमूल्य वस्तुएं शामिल हैं। श्री शेखावत ने कहा इस नीलामी से प्राप्त धनराशि का इस्तेमाल गंगा नदी के संरक्षण में लगाए जाएंगे।
मेमेंटोस का ऑक्शन आज से प्रारंभ होने वाला है। इनमें बहुत सुंदर वस्तुएं हैं, आप सबने अभी देखा होगा, अनेक पेंटिंग्स हैं, अनेक तरह के आर्टिफैक्ट्स हैं, कुछ छायाचित्र हैं, कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो उन्हें उपहार स्वरूप दी गई थी।
इस बार की नीलामी की खासियत कुछ बेहद अनूठी वस्तुएं हैं। इनमें नटराज की धातु की मूर्ति, राम दरबार की तंजौर पेंटिंग, हाथ से बुनी नागा शॉल विशेष आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा पेरिस पैरालंपिक 2024 में भाग लेने वाले भारतीय पैरा एथलीटों द्वारा प्रधानमंत्री को भेंट किए गए खेल स्मृति चिन्ह इस आयोजन की शोभा बढ़ा रहे हैं। यह नीलामी पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और अगले महीने की 2 तारीख तक चलेगी। इस ई नीलामी में इच्छुक लोग वेबसाइट pmmementos.gov.in पर जाकर इसमें भाग ले सकते हैं। परिक्रमा के लिए नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
और अब श्रोताओं को ले चलते हैं खेल के मैदान पर और जानते हैं वहां की हलचल। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले के समापन के बाद मैच रेफरी एनडी पाइक्राफ्ट को हटाने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मांग को खारिज कर दिया है। भारत ने यह मैच 7 विकेट से जीता था। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाए बगैर मैदान से चले गए थे।
Yes, and in the Asia Cup cricket tournament, Bangladesh will meet Afghanistan at Abu Dhabi. The match will start at 8 p.m. IST. Meanwhile, Sri Lanka beat Hong Kong by 4 wickets in the Group B clash at the Dubai International Cricket Stadium last night. Chasing the target of 150 runs set by Hong Kong, Sri Lanka scored 153 for 6 with 7 balls to spare. And now moving on to some business news. Benchmark domestic equity indices Sensex and Nifty opened on a positive note and extended the initial gains to end around 0.7% higher today. The Sensex surged 595 points to cross the 82,000 mark for the first time this month, closing at 82,381, while Nifty advanced 170 points to settle at 25,239. In the global crude oil market, Brent crude was trading nearly 0.3%, down at $67.26 per barrel, and WTI crude was also trading over 0.2%, down at $63.16 per barrel when reports last came in. And in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading up at 1,11,050 rupees per 10 grams, and silver 999 fine was also trading up at 1,29,700 rupees per kilogram when reports last came in.
और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
On this day in 1904, revolutionary freedom fighter Mahavir Singh Rathore was born in Eta district of Uttar Pradesh. He was first drawn to the freedom struggle when he was studying in class 6. Singh was a member of Naujawan Bharat Sabha. He was the one who helped in the escape of Bhagat Singh, Batukeshwar Dutt and Durga Devi from Mozang House in Lahore. He was arrested as part of the second Lahore conspiracy case.
Mahavir Singh Rathore took part in the hunger strike of 1933 to protest against the treatment of prisoners. He died during the hunger strike in cellular jail of the Andaman and Nicobar Islands. His father, Devi Singh, had once said, "Knowing that you are fighting for the country proves that we have not accepted slavery from our hearts. Now that you are on the path to freedom, don't look back and never betray your associates."
16th September is also the death anniversary of Tarukeshwar Sengupta. He took part in the Chittagong Armory Raid. In the mid-1930s, revolutionary activity in Bengal was at its peak. From the Chittagong Armory raid to the invasion of the Writers' Building, the British Raj was feeling the heat. One of the most daredevil acts organized in the history of the Indian revolutionary movement was the Chittagong Armory raid. On 18th April 1930, a band of 63 people, most of them teenagers, led by Shurjo Sen, raided the police and auxiliary forces armory in the Chittagong district and liberated it from British control, unfurling the Indian flag. Though the Chittagong revolutionaries failed in their immediate objective, it helped galvanizing youngsters.
The massive police crackdown that followed resulted in many being detained. Some of them being detained at Hijli Detention Camp near Kharagpur. The Hijli Detention Camp was a majestic double-storied structure with a tower in the center. The entire campus was secured by double gates and a 10-feet-high wall and barbed wire fencing. Even as escape was considered impossible, three did manage to run away. This made the authorities tighten the security.
On September 16, 1931, a group of guards opened fire and cracked the skulls of some prisoners with their rifle butts. Freedom fighters Tarukeshwar Sengupta and Santosh Mitra were shot dead in the tumult. The inmates were shocked, and one of the detainees, Himanshu Bosu, made a pencil sketch of both the victims and sent it to the editor of Anandabajar Putrika. After the report came out, Jyotindra Mohan Sengupta and Netaji Subhash Chandra Bose went to Hijli to take over the dead bodies. They organized a big procession at Calcutta on their way to the crematorium. Disappointed with the deaths, poet laureate Rabindranath Tagore composed the poem Proshno.
Bhagavan, tumi juge juge dut patayacho bare bare daya hil samsare. Tara bole gelo, khama karo sabe. বলে গেল ভালোবাসো অন্তর হতে বিদ্বেষ বেশ নাশো বরণীয় তারা স্মরণীয় তারা তবুও বাহির দ্বারে আজ দুর্দিনে ফেরানো তাদের ব্যর্থ নমস্কার.
Do you know the country's first IIT, that is IIT Kharagpur, is built on this detention camp? In 1950, one of the top engineering colleges of India started functioning from 5 Esplanade East in Kolkata. But later it was decided that they needed a bigger and peaceful location. So they chose a complex at Hijli that was about 150 kilometers far from Kolkata.
On September 16, 1932, in his cell at Yerwada Jail in Pune, Mahatma Gandhi began a hunger strike in protest of the British government's decision to separate India's electoral system by caste. He was in jail after being arrested for the civil disobedience movement he launched after his return from England, where he attended the Round Table Conference. In September 1932, Gandhi announced he was beginning a fast unto death in order to protest the British move to have separate electorate for the downtrodden. Gandhi believed this would permanently and unfairly divide India's society.
और अब हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध भारतीय इंजीनियर और वर्ष 1936 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे ज्वाला प्रसाद को. आज उनकी जयंती है, उनकी पुण्यतिथि है और प्रथम और द्वितीय दिल्ली दरबार की तैयारियों में भी इन्होंने कार्य किया था. विश्वविद्यालय के भवनों पर भारतीय स्थापत्य का जो प्रभाव आज दिखाई देता है वो सब इन्हीं की सूझबूझ का परिणाम है. काशी के मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट के सुधार में इनका महत्वपूर्ण योगदान था. जब देश में प्रथम और द्वितीय दिल्ली दरबार आयोजित किए गए तब उनकी तैयारियों में भी ज्वाला प्रसाद जी ने कार्य किया था और कुछ दिन तक अपने पटियाला राज्य में कार्यपालक इंजीनियर के पद पर कार्य किया. यहां पर आप आर्य समाज सभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे और ज्वाला प्रसाद 10 अक्टूबर 1909 को पटियाला में राजद्रोह के अपराध में गिरफ्तार कर लिए गए और इन्हें पटियाला छोड़ने की आज्ञा दी गई. पर बाद में इन्हें निर्दोष घोषित किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें फतेहपुर का कार्यपालक इंजीनियर नियुक्त किया.
Sir Ronald Ross passed away on this day in 1932. He was a British medical doctor who received the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1902 for his work on the transmission of malaria, becoming the first British Nobel laureate and the first born outside Europe. His discovery of the malarial parasite in the gastrointestinal tract of a mosquito in 1897 proved that malaria was transmitted by mosquitoes and laid the foundation for the method of combating the disease. Ross was a polymath, writing a number of poems, publishing several novels and composing songs. He was also an amateur artist and mathematician. He worked in the Indian Medical Service for 25 years, and it was during his service that he made the groundbreaking medical discovery.
और परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक लेफ्टिनेंट कर्नल एबी तारापुर की आज पुण्यतिथि है. उन्हें ये सम्मान सन 1965 में मरणोपरांत मिला था. उनका पूरा नाम अर्देशिर बरजारी तारापुर है और उनके साथी उन्हें आदि कहकर पुकारते थे. एबी तारापुर के पुरखों का संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना से था. आदि यानी लेफ्टिनेंट कर्नल एबी तारापुर 11 सितंबर 1965 को सियालकोट सेक्टर में हुआ था और वो पूना हॉर्स की कमान संभाल रहे थे. चविंडा को जीतना एक कॉर्पस का मकसद बन गया था और 11 सितंबर 1965 को तारापुर को सियालकोट पाकिस्तान के ही फिल्लौरा पर अचानक हमले का काम सौंपा गया. फिल्लौरा पर एक तरफ से हमला करके भारतीय सेना का इरादा चविंडा को जीतने का था.
M.S. Subbulakshmi was born on this day in 1916. She was an Indian Carnatic singer. She was the first musician ever to be awarded the Bharat Ratna, India's highest civilian honor, and also the first Indian musician to receive the Ramon Magsaysay Award in 1974. She was the first Indian to perform at the United Nations General Assembly in 1966. Let's listen in to one of her hit compositions.
और सुब्बलक्ष्मी बचपन में ही कर्नाटक संगीत से जुड़ गई थी और उनका पहला एल्बम केवल 10 वर्ष की उम्र में निकला. प्रसिद्ध संगीताचार्य सेम्मनगुडी श्रीनिवास अय्यर से संगीत की शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने पंडित नारायण राव से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली. सुब्बलक्ष्मी ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपने गायन का प्रदर्शन एक समारोह के दौरान किया. इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए मद्रास संगीत अकादमी चली गई, जहां केवल 17 वर्ष की उम्र में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए. उन्होंने कन्नड़ के अलावा तमिल, मलयालम, तेलुगु, हिंदी, संस्कृत, बंगाली और गुजराती में भी गीत गाए हैं. उन्होंने 1945 में भक्त मीरा नामक फिल्म में बेहतरीन भूमिका अदा की और उन्होंने मीरा के भजन को अपने सुरों में पिरोया, जो आज तक लोगों द्वारा सुने जाते हैं.
Yes, and Prasoon Joshi was born on this day, 1971. He's an Indian poet, writer, lyricist, screenwriter, communication specialist and marketer. He's a CEO of McCann World Group, Indian chairman, APAC, a subsidiary of the global marketing firm McCann Erickson. He was appointed as a chairperson of the Central Board of Film Certification on 11th August 2017. Prasoon has received the Filmfare Best Lyricist Award 3 times, in 2007 and 2008, and again in 2014 for the Hindi movie Bhag Milka Bhag. He has also received the National Film Award for Best Lyrics twice for his work in Tare Zameen Par in 2007 and Chittagong in 2013. And he was awarded the Padma Shri by the Government of India in 2015 for his contributions towards the field of arts, literature and advertising.
और आज ही पुण्यतिथि है भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका केसरबाई केरकर की. वे जयपुर घराने के संस्थापक उस्ताद अल्लादिया खां की शिष्या थीं. वो भी हैरान करने वाली बात है कि सिर्फ 8 साल की उम्र में ही केसरबाई केरकर ने संगीत की शिक्षा लेना शुरू किया था और गाना शुरू कर दिया. केसरबाई केरकर को कला के क्षेत्र में भारत सरकार ने सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था, तो क्यों ना उनका गाया हुआ राग भैरवी सुन लें. और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक सेनानी, पत्रकार, समाजसेवी और अध्यापक श्यामलाल गुप्त पार्षद की आज पुण्यतिथि है. श्यामलाल गुप्त पार्षद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्प्रेरक झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचयिता थी.
Yes, and Nick Jonas was born on this day in 1992. He's an American singer, songwriter and actor. And he began acting on Broadway at the age of 7 and released his debut single in 2002. This caught the attention of Columbia Records, where Jonas formed a band with his older brothers Kevin and Joe, known as the Jonas Brothers. Let's listen in to a hit track of his.
Give me love, I feel it, I feel it, I feel like a rhythm.
और हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध संगीतकार राम लक्ष्मण की आज पुण्यतिथि है और राशि प्रोडक्शंस की ब्लॉकबस्टर फिल्में मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं में इन्होंने संगीत दिया है, तो उनका ये गाना सुन लेते हैं।
दिल दीवाना बिन सजना के माने ना,
तो श्रोताओं इसी के साथ समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो मुकेश कुमार और अभिषेक मुखोपाध्याय को दीजिए इजाजत, नमस्कार।